आप सबका यहाँ श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में स्वागत है। आज नरसिंह चतुर्दशी है। इसी तिथि पर कई लाखों लाखों साल पहले भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही अद्भुत और भयानक रूप में प्रकट हुए थे, जिनका नाम है नरसिंहदेव, आधा नर आधा सिंह। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, बोलिए, अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि मैं युग युग में अवतीर्ण होता हूं इस भौतिक संसार में, दुष्टों का नाश करता हूं, साधुओं की रक्षा करता हूं, धर्म की संस्थापना करता हूं। भगवान श्री कृष्ण आदि देव हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी भी कहते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण अनेक अवतारों में प्रकट होते हैं। वैसे ज्यादातर लोग दश अवतार की बात जानते हैं। दशावतार में भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग तरह के रूप लिए, जैसे कि मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वरह अवतार और आगे चल के कल्कि अवतार लेंगे। ऐसे कई अवतार भगवान श्री कृष्ण ने लिए। भगवान श्री कृष्ण वास्तव में सारे अवतारों के उगम स्थान हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को अवतारी बताया गया है, अर्थात सारे अवतारों के भी स्रोत हैं वो। इस प्रकार से सारे जो भी अन्य अवतार जो कि इस भौतिक सृष्टि में अवतीर्ण होते हैं, वो सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं या उनके अंशों के अंश हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ये नरहरि या नरसिंह देव का रूप धारण किया, जो कि पहले कभी भी प्रकट नहीं हुआ था। ये बहुत ही विचित्र अद्भुत रूप है, अभक्तों के लिए भयानक लेकिन भक्तों के लिए केवल प्रेम के स्वरूप है। यहां हम देख रहे हैं कि नरसिंह देव भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त से कभी अलग नहीं हो सकते हैं। जहां उनके भक्त हैं वहां भगवान हैं, और जहां भगवान हैं वहां उनके भक्त हैं। भक्त और भगवान, इनकी जोड़ी कई कथाओं में, कई लीलाओं में हम देख सकते हैं, जैसे कि श्री राम और हनुमान की जोड़ी, जैसे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी, ठीक उसी प्रकार से भगवान नरसिंह देव और प्रहलाद की जोड़ी। तो बहुत लंबे साल पहले की बात है, 5000 वर्ष पूर्व गंगा जी के तट पर हस्तिनापुर शहर के पास महाराज परीक्षित, जो कि अभिमन्यु के पुत्र थे, उनको शाप मिला था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। तो तुरंत उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और गंगा जी के तट पर जाकर उपवास का व्रत लिया और साधुओं के संग करने की इच्छा रखी। कई साधु वहां एकत्र हुए। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी, जो कि वेद व्यास जी के सुपुत्र थे, उनको प्रमुख वक्ता के रूप में चुना और वहां पर परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को इस बहुत पावन स्थली में कई प्रश्न किए, जैसे कि मेरी अभी मृत्यु होने वाली है, तो जिस आदमी की मृत्यु होनी है उसके लिए जीवन में कर्तव्य क्या है, जीवन को सफल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऐसे कई प्रश्न सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ने किए और सुखदेव गोस्वामी ने सुंदर उत्तर दिए, और उत्तर देते देते कई बार उन्होंने इतिहास में जो भी अलग अलग घटनाएं हुई हैं, जो अलग अलग संत महात्माओं के बीच में, भक्तों के बीच में संवाद हुए हैं, उनको प्रमाण के तौर में प्रस्तुत करते हुए परीक्षित महाराज के प्रश्नों का पूरी तरह से उत्तर दिया। तो परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न छठे स्कंद के अंत में और सातवें स्कंद की शुरुआत में किया। उन्होंने पूछा कि हे सुखदेव गोस्वामी, बहुत साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ पर आए थे, तो उस समय जब श्री कृष्ण को अग्र पूजा के लिए नियोजित किया गया, तो शिशुपाल ने उनकी बहुत निंदा की, और निंदा जब हद से बाहर बढ़ गई तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया, शिशुपाल की गर्दन काट दी। और मैंने देखा कि शिशुपाल की आत्मा सीधे जाकर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर में लीन हो गई। यहां इस दृश्य को हम देख रहे हैं, शिशुपाल की गर्दन भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से कट गई है, लेकिन शिशुपाल के वक्षस्थल से एक तेजस्वी आत्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की ओर बढ़ रहा है और श्री कृष्ण के शरीर में लीन हो रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज ने जब यह दृश्य देखा तो उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि ये कैसे संभव है कि शिशुपाल जैसे ईर्ष्याले व्यक्ति को ऐसे भगवान के शरीर में लीन होकर सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने का अवसर मिला। उस समय नारद मुनि ने ये सारी कथा आरंभ कर दी और बताया कि वास्तव में शिशुपाल और उनके भाई दंतवक्र भगवान के धाम में वैसे द्वारपाल थे, उनका नाम था जय और विजय। भगवान के धाम वैकुंठ का ये एक छोटा दृश्य है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, इस धाम के परे, इस भौतिक जगत के परे एक ऐसा धाम है जो कि शाश्वत है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, और उस धाम को प्राप्त करने से कोई व्यक्ति इस संसार में लौट कर नहीं आता है। वहां कोई बिजली, कोई सूरज चांद इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से वैकुंठ ये कोई काल्पनिक जगह नहीं है, ये वास्तव में एक सत्य धाम है भगवान का। तद् धाम परमं मम, और भगवान श्री हरि अपने चतुर्भुज रूप में यहां वैकुंठ में निवास करते हैं, अपने नित्य पार्षदों के संग में वो लीला करते हैं। और ये वैकुंठ जगत केवल वही लोग प्राप्त कर सकते हैं जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके अनादि काल से अनंत कोटि शुद्ध भक्त वैकुंठ जगत में सेवा करते आए हैं। और इस प्रकार से हमारा उद्देश्य भी है कि हम इस धाम की प्राप्ति करें, लेकिन जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त नहीं बन जाएंगे तब तक उस धाम की प्राप्ति हम नहीं कर पाएंगे। वहां सब कुछ सत्य है, सबके शरीर दिव्य सच्चिदानंद है, वहां कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई किसी भी तरह का कष्ट नहीं है, केवल भगवान के संग में आनंद ही आनंद है। इस संसार में कोई भी आनंद नहीं है, केवल दुख है, लेकिन भगवान के वैकुंठ धाम में केवल आनंद ही आनंद है। तो उस धाम के योग्य ऐसे भगवान के भक्त होते हैं जो कि हृदय से निर्मल होते हैं, जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया होता है, जो ज्ञान से युक्त हैं, भक्ति से युक्त हैं। ऐसे ही चार भक्त थे, चार कुमार, चतुष कुमार। ये वास्तव में ब्रह्मा जी के वरिष्ठ पुत्र थे। इनका नाम था सनंदन, सनातन, सनत कुमार और सनक। और हालांकि ये ब्रह्मा जी के वरिष्ठ पुत्र थे, फिर भी ये छोटे बच्चे के रूप में पेश आते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम मासूमियत को खोए नहीं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर छल कपट इत्यादि में हम कार्य करने लगते हैं, लेकिन छोटे बालक होते हैं वो हमेशा मासूम होते हैं। इसलिए इस नग्न अवस्था में छोटे से बालक के रूप में वो इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। एक बार जब वो नारायण के पास में आए तो भगवान श्री नारायण के चरण कमलों में अर्पित किए हुए तुलसी पत्तों के सुगंध को सूंघकर उनका हृदय इतना प्रभावित हो गया कि वो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो ये भगवान की भक्ति का बल है कि केवल एक भी इंद्रिय अगर भगवान की सेवा में लगाए जाए तो उससे हमारा जीवन सफल हो सकता है। एक बार ऐसे हुआ कि आप सबको दिख रहा है, पीछे आपको सबको दिख रहा है, और यहां आकर जब वो प्रवेश करना चाहते थे तो वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय वहां पर थे। उन्होंने सोचा कि ये तो कोई साधारण बालक हैं, इसलिए उनको रोक दिया। लेकिन चार कुमारों ने सोचा कि अरे ये तो भगवान का वैकुंठ धाम है और यहां पे भौतिक गुण, तमोगुण और रजोगुण का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कैसे हुआ कि ये भगवान के धाम के द्वारपाल के हृदय में ऐसी द्वेष की भावना कि हम जैसे निष्कपट निर्मल हृदय के साधुओं को, ब्राह्मणों को भी वो वैकुंठ में प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने जय और विजय को शाप दिया और कहा कि हे जय और विजय, क्योंकि आपके हृदय में अभी तक तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव गया नहीं है, इसलिए हम आपको शाप देते हैं कि आप पृथ्वी लोक पर भौतिक जगत में जाकर आप वहां पर असुर योनि में जन्म लेकर वहां रहोगे। जैसे जैसे ये जय और विजय भौतिक जगत की ओर गिरते गए तो चार कुमारों के हृदय में करुणा की भावना जागृत हुई और उन्होंने कहा ठीक है, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन ये शाप केवल 3 जन्मों तक रहेगा। 3 जन्म तक तुम असुर कुल में जन्म लोगे और उसके बाद में जब भगवान श्री हरि अलग अलग अवतार करके तुम्हारा वध करेंगे तब तुम लौटकर वैकुंठ धाम में वापस आओगे। और उसके बाद में जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के 2 बड़े असुरों के रूप में उन्होंने जन्म लिया। जब हिरण्याक्ष ने जन्म लिया तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने और एक बड़ा सुंदर और अद्भुत रूप धारण किया था, वो है वरहदेव का रूप। वरहदेव ने ये शुकर रूप धारण किया था और इस शुकर रूप में उन्होंने पृथ्वी लोक को, जो कि गर्भोदक सागर में गिर पड़ी थी, अपने दंष्ट्रों में उठाया। और जैसे ही वो उठा रहे थे तो हिरण्याक्ष जो कि विजय थे वैकुंठ धाम के द्वारपाल, उन्होंने ये देखा और बड़े क्रोधित होकर आक्रमणकारी भाव में वरहदेव के पास में आए। वरहदेव ने पृथ्वी माता को अपनी शक्ति दिला दी और जल के ऊपर तैरा दिया और फिर हिरण्याक्ष का सामना किया और हिरण्याक्ष और वराहदेव के बीच में बड़ा युद्ध हुआ। काफी समय तक चला। देवी देवतागण बादलों के पीछे छुपकर इस युद्ध को देख रहे थे, सोच रहे थे कि भगवान इस असुर का वध जल्दी से जल्दी कर दें तो कितना अच्छा होगा। और इस प्रकार से जल्दी ही भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। सारे देवी देवता, सारे ब्रह्मांड के ऋषि मुनि, सारे लोग प्रसन्न हुए कि सारे ब्रह्मांड का इतना बड़ा बोझ कम हो चुका है। लेकिन उधर हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि ये कैसे है, ये क्या है, ये विष्णु की चाल है, हम विष्णु से बदला लेंगे। और अपने असुर मित्रों को उन्होंने कहा कि जाओ और पृथ्वी लोक पर और ब्रह्मांड भर में उत्पात कर लो, सारे जगह को, शहरों को, गांवों को जला डालो और मैं विष्णु की खोज में जाता हूं और मैं विष्णु की हत्या करूंगा। उधर हिरण्याक्ष के वध के बाद में हिरण्याक्ष की एक रानियां और उनके और जो रिश्तेदार थे वो शोक कर रहे थे हिरण्याक्ष के लिए। और उस समय वहां पर पहुंचे हिरण्यकश्यप और उनको उपदेश देने लगे। एक साधारण ऐसे उपदेश उन्होंने दिया जिससे समझा नहीं जा सकता था कि ये बड़े असुर हैं। भगवत गीता के ही वचन उन्होंने दोहराए और बताया कि आत्मा तो अमर है, आत्मा कहां से आती है, कहां से जाता है, मृत्यु के बाद किसी को कुछ मालूम नहीं, इसलिए मृत्यु और जन्म ये अपने अपने प्रारब्ध से, अपने अपने कर्मों से हमें मिलते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इन चीजों के लिए शोक नहीं करता। तो मैं आपको एक कहानी बता रहा हूं। ये कहानी है एक राजा की जिसका नाम था सुयज्ञ। ये सुयज्ञ राजा उशिनार प्रांत का राजा था और जब उसकी मृत्यु हो गई रणभूमि पर तो उसकी रानियां वगैरह वो बड़ा शोक कर रहे थी और अंतिम क्रिया के लिए भी शरीर को नहीं ले गए। उस समय इनकी दर्द भरी पुकार यमराज तक पहुंची। यमराज वहां पर वेश बदल के एक छोटे बालक के रूप में आए। यहां हम देख रहे हैं दाहिने ओर बालक हैं जो कि यमराज वेश बदल के आए हैं। नीचे जमीन पर लेटे हुए हैं राजा सुयज्ञ जिनकी मृत्यु हो गई है और उनके पास में उनकी रानियां और रिश्तेदार हैं। तो यमराज इस बालक के रूप में बोलने लगे, तेरे कितनी आश्चर्य की बात है कि आप भी इतने बड़े हैं उम्र से, आप मृत्यु को हर दिन देखते हैं, फिर भी आप पहचानते नहीं है कि आपकी मृत्यु भी एक दिन होने वाली है। वास्तव में जन्म और मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, इसमें आत्मा का कुछ लेना देना नहीं होता है। इस प्रकार से यमराज ने उपदेश दिया और ये आध्यात्मिक प्रवचन सुनने के बाद में, और वो भी एक बालक से, उनका मन शांत हो गया। ऐसे दर्शन को छोटे बालक के मुख से सुनकर उनको बड़ा आश्चर्य भी हुआ और फिर उन्होंने अपना शोक त्याग दिया और अंतिम क्रियाएं किए। तो हिरण्यकश्यप ने इस प्रकार से हिरण्याक्ष के रिश्तेदारों को सांत्वना दिया और बाद में हिरण्यकश्यप अपने कार्य को संपन्न करने के लिए तपस्या करने मंदराचल पर्वत में चले गए। देखिए इतनी भीषण तपस्या की हिरण्यकश्यप ने। यहां हिरण्यकश्यप क्या तपस्या कर रहे हैं, अपने पैरों के अंगुष्ठों पर खड़े हैं और हाथ ऊपर फैलाए हुए हैं, सर आकाश की ओर, आंखें खोले हुए सूरज की ओर देखते हुए। और इस प्रकार से हिरण्यकश्यप देवताओं के 100 साल तक ऐसी उन्होंने तपस्या की, अर्थात 36,000 साल। उनके सारे शरीर को चींटियां कीड़े वगैरह खा गए, लेकिन फिर भी हिरण्यकश्यप के शरीर में प्राण घूमता गया, हिरण्यकश्यप मरे नहीं। ऐसे कई सालों तक जब तपस्या किया हिरण्यकश्यप ने तो तपस्या की वजह से उसके बालों से भीषण अग्नि बाहर आने लगी, जिसकी वजह से सारे ब्रह्मांड भर में इतनी गर्मी फैल गई कि देवलोक में भी सारे देवी देवता अपने अपने लोक को छोड़कर ब्रह्मा जी के पास में आए और कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, हे सृष्टिकर्ता, ये हिरण्यकश्यप इतना भयंकर तपस्या कर रहा है, आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं कि हिरण्यकश्यप का उद्देश्य क्या है। वास्तव में हिरण्यकश्यप चाहता है कि वो आपके पद को प्राप्त करे, क्योंकि आपने भी बहुत तपस्या की हुई है और इस पद को प्राप्त किया है। तो हिरण्यकश्यप भी चाहता है कि वो भी तपस्या के बल पर आपके जगह में, आपके कुर्सी में आके बैठ जाए और भी सारे ब्रह्मांड को वही चलाए। तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं जाके देख लेता हूं कि क्या बात है, ये हिरण्यकश्यप को चाहिए क्या और क्यों इतनी भीषण और भयंकर तपस्या कर रहा है। उस समय ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन के ऊपर स्थित होकर हिरण्यकश्यप के पास में आए। इस चित्र में ऊपर आप देख रहे हैं हंस वाहन, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी सवार हुए हैं। अलग अलग देवी देवताओं के वाहन होते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी का वाहन है हंस। पहले तो ब्रह्मा जी और उनके साथ में जो ऋषि मुनि आए थे वो हिरण्यकश्यप को ढूंढ नहीं निकाल पाए, क्योंकि केवल हड्डियां बची थीं हिरण्यकश्यप के शरीर में, सारा मांस खा गए थे कीड़े और चींटियां वगैरह, सारा खून भी पी गए थे। और ये हड्डियों के ऊपर चींटियों का पहाड़ वाल्मीकि था और नाना प्रकार के लकड़ियां, घास इत्यादि वहां पर थे। लेकिन आखिर जिस तेज और अग्नि से हिरण्यकश्यप वहां खड़े थे, वहां वो ब्रह्मा जी उनको पहचान पाए और फिर जब आए तो कहने लगे कि अरे हिरण्यकश्यप, तुमने ऐसी भयंकर तपस्या की है जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आज तक नहीं कर पाए हैं। तुमने देवताओं के 100 साल तक ये कड़ी तपस्या की और इस दौरान तुमने एक बूंद पानी भी नहीं पिया है। आज नरसिंह देव चतुर्दशी के उपलक्ष में भक्त सूर्यास्त के समय तक निर्जल उपवास रखने का प्रयत्न करते हैं। एक दिवस उपवास करने से भी कितना कष्ट होता है, लेकिन हिरण्यकश्यप जैसे असुर ने 36,000 सालों तक तपस्या की। और ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि तुम्हारी तपस्या से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, और अपने कमंडलों से थोड़ा पानी लेकर हिरण्यकश्यप के शरीर में छिड़क दिया और सीधे उनका शरीर बड़ा तेजस्वी, पिघले हुए सोने की तरह हुआ और इतना शक्तिशाली कि वज्र को भी वो सहन कर सकता था। हिरण्यकश्यप ने ये सुंदर शरीर प्राप्त करके वरदान मांगे ब्रह्मा जी से और कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप तो स्वयं परमेश्वर हैं, आप सृष्टि के उगम स्थान हैं और आप ही सारा ब्रह्मांड चलाते हैं। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने भगवान कहके ब्रह्मा जी को संबोधित किया। वास्तव में ब्रह्मा जी तो सृष्टि करता है, लेकिन जिस शक्ति और ज्ञान से वो सृष्टि की रचना करते हैं वो भगवान श्री हरि से आती है, और ब्रह्मा जी भी स्वयं भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त हैं। लेकिन इस बात को हिरण्यकश्यप नहीं जानते थे। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि मेरी मृत्यु आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी के हाथों में नहीं होनी चाहिए, न तो किसी पशु, न तो किसी देवता, न गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पक्षी इत्यादि, इन किसी के हाथों से मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मेरी मृत्यु घर के अंदर भी नहीं, घर के बाहर भी नहीं होनी चाहिए, आकाश में भी नहीं होनी चाहिए, पानी में भी नहीं, जमीन पर भी नहीं, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं, किसी हाथों से नहीं। इस प्रकार से नाना प्रकार के वरदान मांगे हिरण्यकश्यप ने और फिर कहने लगे कि मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आपकी तरह ही सर्वशक्तिमान रहूंगा इस ब्रह्मांड में और मेरा सामना करने योग्य कोई आदमी इधर नहीं रहेगा, और मुझे सारे योग के सिद्धियां भी दीजिए, अणिमा, लघिमा, महिमा, जिससे मैं अपने आप को छोटा कर सकूं, बड़ा कर सकूं, मजबूत कर सकूं, भारी कर सकूं, हल्का कर सकूं, ये सारे अलग अलग सिद्धियां हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जैसे तुम्हारी इच्छा। और ब्रह्मा जी चले गए। उधर हिरण्यकश्यप को ये शक्ति जब मिल गई तो सारे ब्रह्मांड में उन्होंने वश में कर लिया। सारे देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को, यक्षों को, गंधर्वों को, मनुष्यों को, सबको हराकर सारे ब्रह्मांड में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सारे देवता, सारे ऋषि मुनि, सभी लोग हिरण्यकश्यप से घबराते थे। केवल ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु छोड़कर हर कोई इस ब्रह्मांड में हिरण्यकश्यप से घबराता था। इतना शक्तिशाली बन गया था। सारे देवी देवताओं का कार्य भी हिरण्यकश्यप संभालने लगा। अकेला सारे ब्रह्मांड को चला रहा था। तो देखिए कितना शक्तिशाली। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रह्लाद। एक बार जब प्रह्लाद को हिरण्यकश्यप ने अपने गोदी में लिया और पूछा कि अरे प्रह्लाद, तुमने अपने पाठशाला में क्या सीखा है? तो प्रह्लाद ने जवाब दिया कि हे पिताजी, जो व्यक्ति ऐसे स्थान में रहते हैं जहां की आध्यात्मिक संस्कृति और सभ्यता नहीं है, वो एक अंधकूप में रहता है। उसे ऐसे स्थान को त्यागना चाहिए और वन में जाकर भगवान श्री हरि का आश्रय लेना चाहिए। प्रह्लाद ने ऐसे कहा क्योंकि प्रह्लाद भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त थे। हालांकि प्रह्लाद केवल 5 साल के बालक थे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे और अंदर ही अंदर हमेशा भगवान का स्मरण किया करते थे। और नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को बताया कि ये प्रह्लाद इतना महान भक्त है कि हालांकि इसका जन्म असुर परिवार में हुआ है और असुर और देवता दोनों शत्रु हैं, लेकिन फिर भी असुरों के शत्रु देवता भी किसी भी सत्संग में जब भक्ति की बात होती है और महान भक्तों का वर्णन होता है तो प्रह्लाद का नाम अवश्य लेते हैं। तो ये है प्रह्लाद कि उनके शत्रु भी उनका गुणगान करते हैं। हाँ, प्रह्लाद के हृदय में कोई मित्र और कोई शत्रु नहीं था। प्रह्लाद भगवान का शुद्ध भक्त होने के नाते सभी से प्रेम करता था, किसी से द्वेष नहीं करता था। जब हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद से यह उत्तर सुना तो हंसने लगे, आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे उनके गुरु से, बच्चों के गुरु से शंड और अमरक, कि ये शायद वैष्णवों की चाल है कि हमारे दरबार में आकर वेश बदल के मेरे बच्चे का मन इन्होंने खराब कर दिया है, तो जाओ इसको अच्छी चीजें सिखाओ। और वहां पर शंड और अमरक वापस आए, नाना प्रकार से प्रह्लाद को उपदेश देने का प्रयास किया और फिर से हिरण्यकश्यप के सामने लाए। और हिरण्यकश्यप ने फिर से पूछा कि अरे प्रह्लाद, अब बताओ तुमने क्या सीखा है तुम्हारे अध्यापकों से पाठशाला में? तो उस समय भी प्रह्लाद ने भगवान की भक्ति की बात की और कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा। ये 9 प्रकार की भक्ति हम सबको करनी चाहिए हे मेरे पिताजी, और जो व्यक्ति ऐसे करता है वो वास्तव में सबसे विद्वान व्यक्ति है, ऐसे मेरा मत है। जब ये हिरण्यकश्यप ने सुना तो बड़ा क्रोध आया, प्रह्लाद को अपने गोदी से हटा दिया, नीचे फेंक दिया जमीन पर और शंड और अमरक से कहा कि ये क्या है, तुमने क्या सिखाया है? शायद तुम ही मेरे शत्रु हो, केवल मित्र के रूप में आकर यहां मेरे असुर कुल का नाश करने के लिए तुम आए हो। तो अध्यापकों ने कहा कि हे राजन, आपको इस तरह के निंदा करना उचित नहीं है। हम तो आपकी सेवा में तत्पर हैं। न जाने कहां से इस बालक प्रह्लाद ने भक्ति की बातें सुनी हैं। हमने तो कभी प्रह्लाद को भक्ति की बातें सुनाई नहीं, बल्कि हम तो प्रह्लाद को सिखा रहे हैं कि कैसे अच्छे से अच्छा अभक्त बने, कैसे अच्छे से अच्छा असुर बने, कैसे अच्छे अच्छे अच्छी तरह से बुरे काम करें, ये हम सिखा रहे हैं। लेकिन न जाने प्रहलाद को ये भक्ति की बातें, विष्णु की बातें कहां से आ रही है। तो उस समय प्रहलाद ने और उपदेश देना आरंभ किया, भक्ति का प्रवचन चालू किया। उस समय हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आया कि वो सहन नहीं कर पाए, और हिरण्यकश्यप ने जोर से अपने असुर मित्रों से कहा कि हे असुरों, हालांकि ये मेरा पुत्र है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसको शरीर से उखाड़ कर फेंकना आवश्यक है, नहीं तो ये बीमारी सारे शरीर को खा जाएगी। इसलिए हालांकि ये मेरा पुत्र है, मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ है, लेकिन अभी इसकी हत्या करनी चाहिए। और उसके बाद में असुरों ने नाना प्रकार से हत्या करने का प्रयास किया प्रहलाद का। प्रहलाद को एक ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया। प्रहलाद केवल बालक थे, लेकिन भगवान बताते हैं परित्राणाय साधु नाम, अन्य जगह भगवान बताते हैं कौन्तेय जाने ही प्रतिजाने ही नमे भक्तः प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का विनाश कभी नहीं होता है। इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा कर ली। आगे चल के कई तरह के उपद्रव किए, उनको जहरीले सांप के कुंड में फेंक दिया, नाना प्रकार के अस्त्रों से, त्रिशूलों से, शस्त्रों से आक्रमण किया। और ये असुर दिखने में भी बड़े भयानक थे, भयंकर थे, लेकिन प्रहलाद का एक बाल भी नहीं बका, क्योंकि वह भगवान के शुद्ध भक्त थे। और इतना ही नहीं, सारे तरकीब निकालकर देखे हिरण्यकश्यप ने, प्रहलाद को उबलते हुए तेल के पात्र में डाला, प्रहलाद को पागल मतवाले हाथी के पैरों के नीचे डाल दिया, जादू टोना का प्रयोग किया, लेकिन जो भी कुछ करें प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, इन सारी परिस्थितियों से गुजरते हुए भी प्रहलाद बिल्कुल निर्भय और शांत अवस्था में थे। एक भी बार प्रहलाद ने डर के क्षमा नहीं चाही हिरण्यकश्यप से, क्योंकि प्रहलाद इतने शुद्ध भक्त थे कि मन ही मन में वो हमेशा भगवान का स्मरण कर रहे थे। यहां तक कि उन्होंने कभी भी भगवान से अपने आप को बचाने के लिए भी प्रार्थना नहीं की, क्योंकि प्रहलाद को मालूम था कि भगवान निश्चित रूप से मुझे बचाएंगे। और क्योंकि वो जानते थे कि ये सब कुछ भगवान की संपत्ति है, तो उनके मन में ये विचार था कि अगर भगवान हमें बचाना चाहें तो भगवान बचाएंगे, और अगर नहीं बचाना चाहेंगे तो नहीं बचाएंगे। भगवान तो सर्व स्वतंत्र हैं, जैसे वो निर्णय लेना चाहते हैं वैसे ले सकते हैं। इसलिए प्रहलाद ने ये सारी चीजें सहन कर ली और केवल भगवान का स्मरण करते रहे। यहां इस चित्र में हम देख रहे हैं कि हालांकि ये भयानक असुर आक्रमण कर रहे हैं प्रहलाद को, लेकिन फिर भी प्रहलाद बड़े शांति से, आराम से हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि को प्रार्थना कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, बिल्कुल विचलित नहीं हुए हैं। इतना सब होने के बाद हिरण्यकश्यप बड़ा निराश हो गया कि ये बच्चा शायद मेरे मृत्यु का कारण होगा, और इतना शक्तिशाली है ये 5 साल का बालक कि इतना सब करने के बाद भी इसके शरीर का एक बाल भी नहीं बका है। उस समय शंड और अमरक प्रहलाद के अध्यापक आए और कहने लगे कि चिंता न कीजिए हे राजन, हम फिर से इसकी शिक्षा आरंभ करेंगे और बड़ा होकर ये लड़का अच्छा असुर बन जाएगा। अभी बचपना है, बचपने की वजह से इस प्रकार से शत्रु की बारे लेकर ऐसे बात कर रहा है, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है। उधर प्रहलाद अपने पाठशाला में आए, क्योंकि शुद्ध भक्त दूसरों को प्रचार करके ही रहता है, अपने आप को रोक नहीं सकता। जब भी शंड और अमरक अपने घर जाते थे थोड़े समय के लिए, तो प्रहलाद इस मौके का फायदा उठाते थे और अपने मित्रों के साथ में कीर्तन किया करते थे। और अपने मित्र सारे इस कीर्तन में शामिल हुआ करते थे। तो इस प्रकार से सत्संग बना लेते थे प्रहलाद महाराज अपने पाठशाला में। और आगे चल के प्रहलाद अपने मित्रों को उपदेश देते थे। उनके मित्र कहने लगे प्रहलाद से कि हम तो छोटे बालक हैं, हमारी ये उम्र नहीं है कि हम ये सब भक्ति और अध्यात्म की बातें करें। हमारा तो उम्र केवल ये है कि हम खेलकूद करें, हम मजा करें, इधर उधर भागदौड़ करें। हम जब बड़े हो जाएंगे तब हम ये सब भक्ति वक्ति करेंगे। तो उस समय प्रहलाद ने जवाब दिया, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान यह दुर्लभम मानुष जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थदम। कि हे मित्रों ये सुनो, हमारा जो मनुष्य जन्म है ये बहुत दुर्लभ है, और हालांकि थोड़े साल ही रहेगा लेकिन फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल इस मनुष्य जन्म में हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, किसी अन्य योनि में ये संपन्न करना बड़ा कठिन है। इसलिए मनुष्य जीवन को प्राप्त करके हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कौमार अवस्था से ही अर्थात बचपन शिशु अवस्था से हमें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का हर एक क्षण बहुत मूल्यवान है। सुनो मेरे मित्रों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि मनुष्य जीवन में ज्यादा से ज्यादा लोग 100 साल जीते हैं, लेकिन लोग मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी वो ज्यादा से ज्यादा सोना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। दिन में 10-12 घंटे तो लोग सोते हैं, तो 100 साल की आयु में 50 साल तो केवल सोने में निकल जाते हैं। इसलिए आदमी के रह गए 50 साल, बाकी 50 साल में आप देखेंगे कि 10 साल केवल बचपन की अवस्था में चले जाता है और बच्चे को कुछ पता नहीं चलता, और उसके बाद में जो 10 साल है वो खेल कूद में चले जाता है और बच्चे को इस लाइन में आने की कोई दिलचस्पी रुचि नहीं रहती है। और आखिर के जो बुढ़ापे के 20 साल हैं, उसमें शरीर इतना कमजोर हो जाता है बीमारी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से, और नाना प्रकार के चिंताग्रस्त होकर व्यक्ति भगवान के ऊपर अपना मन केंद्रित नहीं कर सकता है। इसलिए ये 40 साल से आधा यानी 20 साल ये भी बर्बाद हो गए, क्योंकि सोने के लिए जो 50 साल लिए थे तो ये 40 साल के आधा भी उस सोने में हमने पहले से गिन लिया है, इसलिए 20 साल। तो 50 साल सोने में गए, 20 साल बाकी इस तरफ गए, रहे केवल 30 साल। और 30 साल में भी जो व्यक्ति अपने परिवार में, अपने पैसे में, अपने धन दौलत में, समाज में अटक के रह जाता है, उसके लिए भगवान के ऊपर मन केंद्रित करना बड़ा कठिन है। क्योंकि हे मेरे मित्रों, ये समाज में, ये संसार में पैसा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। पैसा, ये दो अक्षर जो हैं, ये मधु के बराबर मीठे हैं भौतिकवादी लोगों के लिए। पैसे के लिए ये संसार के लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, यहां तक कि अपने प्राण को भी खतरे में डालने के लिए तैयार हैं। तो ये कितनी मूर्खता की बात है मेरे मित्रों कि ये पैसा क्या हम मृत्यु के बाद में ले जा पाएंगे? नहीं, सब कुछ यहां हमें छोड़ जाना पड़ेगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि मनुष्य जीवन में आकर भगवान श्री हरि की भक्ति वो करे। वास्तव में प्रहलाद ने जो कही बातें अपने मित्रों को, कितनी महत्वपूर्ण है। प्रहलाद के विश्लेषण और गणना के अनुसार 100 साल के जीवन में केवल 30 साल रह जाते हैं जिसमें हम थोड़ा बहुत भक्ति कर सकते हैं, और वो 30 साल में भी आदमी अगर पैसे पैसे के पीछे, अपने कुटुंब के पीछे भागता रहे तो वो 30 साल भी नष्ट हो जाते हैं। आजकल के जमाने में लोग 100 साल भी नहीं जीते हैं, 60-70-80 साल ज्यादा से ज्यादा जीते हैं, तो उतना समय और भी कम हो गया। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में भगवान की भक्ति करने के लिए कितना समय रह गया? कुछ भी नहीं। इसलिए प्रहलाद का उपदेश हम सबको स्वीकार करना चाहिए, बचपन से ही भगवान की भक्ति हमें सब करनी चाहिए। तो प्रहलाद के मित्रों ने ये बातें बड़ी ध्यान से सुन ली, बड़े अच्छे लगे उनको ये बातें, और आगे चलकर हिरण्यकश्यप को जब पता चला, शंड और अमरक से बात आई, रिपोर्ट आई कि आपके पुत्र प्रहलाद ने भक्ति तो छोड़ी नहीं, साथ साथ में पाठशाला में सारे जो उसके मित्र हैं, सारे असुरों के जो पुत्र हैं, उनको भी प्रदूषित कर दिया है और उनको भी विष्णु का भक्त बना दिया है। जब प्रहलाद को जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला तो बहुत क्रोध आया और तुरंत प्रहलाद को बुलाया अपने दरबार में और कहने लगे कि हे दुष्ट बालक, हे दुर्विनीत, तुम मेरे सारे वंश का नाश करना चाहते हो, इसलिए तुम अपने मृत्यु को पुकार रहे हो। तुम बड़े प्रवचन देते हो कि हमें इंद्रियों को वश में करना चाहिए, क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझसे अच्छा अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हो? मुझसे श्रेष्ठ ब्रह्मांड में और कौन है? सारे देवी देवता, ब्रह्मांड के सारे राजा प्रजा सब मेरे नाम मात्र से डरते हैं, लेकिन तुम निडर हो, इसलिए मैं समझ सकता हूं कि यमराज के दरबार में जाने के लिए तुम्हारा समय आ चुका है। बोलो, तुम्हारे पास शक्ति कहां से आती है मेरा सामना करने के लिए? तो प्रहलाद ने जवाब दिया कि हे पिताजी, मेरी शक्ति उसी जगह से आती है जहां आपकी शक्ति आती है, और वो है भगवान श्री हरि से। हम दोनों को ही नहीं, भगवान श्री हरि सब प्राणियों को शक्ति देते हैं, क्योंकि वो बल, शक्ति, बुद्धि और सारे अच्छे गुणों के सागर हैं। सब कुछ उन्हीं से आता है, इसलिए हे पिताजी, ये दुष्टता को त्याग कीजिए, भगवान श्री हरि के शरण में आइए, तभी आपका जीवन सुधर सकता है। ये मूर्खता को त्याग कर आप अपने जीवन को सफल बनाइए। ये उपदेश और सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और भी बढ़ गया और कहने लगा, बार बार तुम ये विष्णु 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 कहते हो, अब देखें ये विष्णु तुम्हारी रक्षा कैसे करेगा। मैं तुम्हारे गर्दन को शरीर से अलग कर दूंगा और फिर देखते हैं कि विष्णु कैसे आगे तुम्हारी रक्षा करता है। उस समय हिरण्यकश्यप ने अपना तलवार बाहर निकाला और अपने स्वयं के मुष्टियों से वहां दरबार के अंदर जो खंभा था उसके ऊपर मुक्का प्रहार किया, और जैसे ही प्रहार किया तो एक इतना भीषण भयानक आवाज वहां से निकली कि सारे ब्रह्मांड के कोने कोने में यह आवाज फैल गई। यहां तक कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी भी अपने आसन पर बैठे थे, वो भी घबरा गए। उन सब ने सोचा कि शायद हमारे लोगों का विनाश का समय आ गया है। उधर हिरण्यकश्यप के दरबार में सारे असुर भी घबरा गए इस आवाज को सुनकर, लेकिन इस आवाज को पहचान नहीं पाए। यह आवाज कहां से आ रही है? क्या उगम स्थान है इस आवाज का? किसने यह आवाज किया है? सारे असुर हिरण्यकश्यप के साथ साथ इधर उधर देखने लगे और अचानक उस खंभे को तोड़कर अंदर भगवान ने एक बहुत ही सुंदर और विशेष रूप धारण किया, भगवान नरसिंह देव का रूप। यहां हम देख रहे हैं कि नरसिंह देव ने जब ये रूप धारण किया, आधा शरीर सिंह का, आधा शरीर मनुष्य का, और हिरण्यकश्यप एक चील की तरह कभी ऊपर आकाश में कभी नीचे जमीन पर आक्रमण करने लगा, लेकिन नरसिंह देव भगवान ने युद्ध किया हिरण्यकश्यप के साथ। लंबे समय तक ये युद्ध चला। एक बार नरसिंह देव भगवान ने हिरण्यकश्यप को आसानी से पकड़ लिया, जिस प्रकार गरुड़ एक सांप को पकड़ लेता है या जिस प्रकार से एक सांप एक चूहे को पकड़ लेता है, और अचानक जानबूझकर नरसिंह देव भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने हाथों से छोड़ दिया। वास्तव में नरसिंह देव भगवान केवल खेल रहे थे हिरण्यकश्यप से, लेकिन हिरण्यकश्यप ने सोचा कि विष्णु ने कमजोरी की वजह से छोड़ने के लिए वो बाध्य हो गए, अभी मैं विष्णु की हत्या करने वाला हूं। थोड़ा थोड़ा बहुत और खेल किया नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप के साथ में, बार बार अट्टहास करते थे, जोर जोर से हंसते थे, और जब ये जोर हंसी सुनकर हिरण्यकश्यप का हृदय टूट जाता था और भय से वो आंखें बंद कर लेता था। और आक्रमण करते करते आखिर जब देवता गण ने कहा कि हे प्रभु, जल्दी से इस दुष्ट असुर का वध कर दीजिए, क्योंकि हम चिंतित हो रहे हैं कि ये बहुत शक्तिशाली है और देर न करें, तब भगवान श्री नरसिंह देव ने उठा लिया हिरण्यकश्यप को, अपने गोदी में बिठा लिया, और गोदी में बिठाने के बाद में अपने नखों से वक्षस्थल हिरण्यकश्यप का फाड़ दिया, उसके अंतड़ियां निकाल दिए और अपने ही गले में माला के रूप में पहन लिया। लगता तो है बड़ा उग्र रूप ये भगवान का, लेकिन भगवान के उग्र रूप में और उनके कोमल रूप में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में कई बार जनसाधारण में ये एक गलत धारणा है कि भगवान नरसिंहदेव का ये तस्वीर जो बड़ा उग्र रूप है, ये हमारे घर में हमें नहीं लगाना चाहिए, हमारे घर में केवल शांत रूप होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जहां भगवान है और भगवान के भक्त हैं, वहां कोई अशुभ चीज नहीं हो सकती है। खास करके भगवान के भक्तों के लिए तो नरसिंह देव घर में आएंगे तो अवश्य वो परिवार के सभी लोगों की रक्षा करेंगे। इसलिए हम सबको नरसिंह देव के इस बड़े सुंदर और अद्भुत रूप के शरण में जाना चाहिए। यहां हम देख रहे हैं कि हालांकि हिरण्यकश्यप का वध कर रहे थे नरसिंह देव और सारे देवी देवता भी घबरा रहे थे, लेकिन प्रहलाद नहीं घबराए। प्रहलाद ने जाकर प्रार्थना की, जय जयकार कर रहे थे नरसिंह देव भगवान का। हिरण्यकश्यप का वध करने के पश्चात भगवान नरसिंह देव ने सारे असुर सेना को वध कर दिया केवल अपने नाखून से, और लाखों लाखों असुर सैनिक मारे गए केवल भगवान के हुंकार से और उनके नाखून से। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के वरदान को बनाए रखकर भगवान श्री नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि न तो घर का अंदर होगा न घंदर घर के बाहर वध होना है, लेकिन सीढ़ियों पर बैठे नरसिंह देव, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि हिरण्यकश्यप की मृत्यु ऊपर नहीं होनी चाहिए आकाश में, न तो जमीन पर होनी चाहिए। इसलिए नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को अपने गोदी में बिठा दिया। हिरण्यकश्यप ने मांगा था कि आपके बनाए हुए कोई भी प्राणी मेरी हत्या नहीं करें, लेकिन भगवान श्री नरसिंह देव को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, वो तो स्वयं भगवान है। और हिरण्यकश्यप ने मांगा था कि मेरी मृत्यु अस्त्र शस्त्रों से या किसी के हाथ से भी नहीं होनी चाहिए, तो नरसिंह देव ने ये वरदान को भी बनाए रखा, क्योंकि किसी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, केवल अपने नाखूनों से वक्षस्थल को फाड़ दिया। और हिरण्यकश्यप ने पूछा था कि न दिन में न रात में मेरी मृत्यु होनी है, लेकिन नरसिंह देव ने ठीक सूर्यास्त के समय प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया। सूर्यास्त का समय जो होता है, न दिन का समय होता है न रात का समय। इस प्रकार से बड़ी चतुराई से नरसिंह देव भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। जब देवी देवताओं ने देखा कि भगवान नरसिंह देव अभी आसन पर बैठे हुए हैं, जो कि हिरण्यकश्यप जहां बैठता था, उस समय एक एक करके सारे देवी देवता प्रार्थना अर्पण करने लगे, लेकिन फिर भी नरसिंह देव का क्रोध कम नहीं हुआ। तो सारे देवी देवताओं ने लक्ष्मी देवी को आगे भेजा और कहा कि जाओ, आप हिरण्यकश्यप के वध करने वाले नरसिंह देव के सामने जाओ। तो लक्ष्मी देवी ने कहा नहीं, मैं ऐसे भगवान के सामने नहीं जा सकती, मैंने तो इनसे विवाह नहीं किया था, ये कौन से विष्णु भगवान हैं, मैं तो पहचान नहीं सकती हूं। तो लक्ष्मी देवी भी उनके सामने नहीं गए, लेकिन सबने फिर प्रहलाद से कहा, अरे प्रहलाद तुम आगे जाओ। और इस प्रकार से प्रहलाद आगे गए और प्रहलाद ने सुंदर से प्रार्थना की। नरसिंह देव बड़े प्रसन्न हुए और नरसिंह देव ने कहा कि अरे प्रहलाद तुम जो चाहे मुझसे मांग सकते हो। उस समय प्रहलाद ने कहा कि हे प्रभु, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, मैं आपसे कोई भी भौतिक चीज नहीं चाहता हूं, भक्ति ये व्यापार नहीं होता, अगर वरदान आप देना ही चाहते हैं तो कृपा करके ये वरदान मुझे दीजिए कि मैं आपको कभी भूलू नहीं, आपका स्मरण मेरे चित्त में सदैव बना रहे। और इस प्रकार से प्रहलाद ने हम सब के लिए आदर्श खड़ा कर रखा है कि हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए, भगवान की सेवा किस भावना से करनी चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कुछ तो मांगो। तो प्रहलाद ने कहा ठीक है, मैं आपसे ये वरदान चाहता हूं कि मेरे पिता हिरण्यकश्यप, जो कि इतने दुष्ट थे, आपके शत्रु मान रहे थे अपने आप को, उन्होंने मुझे और वैष्णवों को बहुत सताया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कृपा करके उनको क्षमा करें। देखिए ये है भक्त, हालांकि हिरण्यकश्यप ने इतना अत्याचार और अन्याय किया था प्रहलाद के प्रति, फिर भी प्रहलाद के हृदय में बिल्कुल बदले की भावना या द्वेष भावना नहीं थी। उस समय नरसिंह देव ने जवाब दिया कि अरे प्रहलाद तुम चिंता नहीं करो, क्योंकि जैसे ही मैंने हिरण्यकश्यप के शरीर का स्पर्श किया वैसे ही हिरण्यकश्यप का उद्धार हो गया, और क्योंकि तुम मेरे शुद्ध भक्त हो इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारी 21 पीढ़ियां तुम्हारे भक्ति करने मात्र से शुद्ध हो गई हैं। तो देखिए ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, जब हम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त बन जाते हैं तो उस समय हमारे इस जन्म के 7 पीढ़ियां जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पिछले जन्म में जो भी हम थे, हमारे उस जन्म के 7 पीढ़ियां पूर्वज के और उसके पहले जन्म के और हमारे 7 पीढ़ियां पूर्वज के, कुल मिलाकर 21 पीढ़ियां शुद्ध हो जाती हैं केवल हमारे शुद्ध कृष्ण भक्त बनने से। यह वरदान नरसिंह देव ने स्वयं प्रहलाद को दिया और साथ साथ प्रहलाद के पद चिन्हों में चलने वाले जो भी भक्त आएंगे उन सब के लिए ये वरदान दिया। तो कितने आश्चर्य की बात है, भगवान की कृपा देखिए, अगर किसी भी परिवार में एक भी व्यक्ति शुद्ध कृष्ण भक्त हो जाता है तो उसकी 21 पीढ़ियां शुद्ध हो जाती हैं केवल एक व्यक्ति के वजह से। तो नरसिंह देव ने इस प्रकार से आशीर्वाद दिया प्रहलाद को और कहा कि लंबे समय तक, जब तक कि यहां मनुदेव का देहांत नहीं होता है तब तक तुम यहां भौतिक ब्रह्मांड में रहकर राज करोगे, सुतल लोक में रहोगे, और इस प्रकार से जब तुम्हारी मृत्यु होगी लाखों साल के बाद में तुम मेरे धाम को प्राप्त होगे। और नरसिंह देव अपने धाम में वापस चले गए और उधर ब्रह्मा जी और अन्य जो भी देवता थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने प्रहलाद महाराज को राज सिंहासन पर बिठाया और प्रहलाद महाराज सारे ब्रह्मांड के राजा बने केवल 5 साल के आयु में। क्योंकि प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे इसलिए इतने शुद्ध थे। और प्रहलाद ने जब नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था तो और क्या रह गया था प्रहलाद के लिए, यही हमारी जीवन की सफलता भी है। अगर इस प्रकार से भगवान का के दिव्य हाथों का, कर कमलों का स्पर्श हमारे शरीर से हो जाए, अगर भगवान नरसिंह देव की कृपा प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन भी धन्य होगा। भक्ति में प्रगति करने के लिए हमें बहुत कठिनाइयां मार्ग में मिलेंगी, अड़चनें आएंगी, लेकिन अगर हम नरसिंह देव से प्रार्थना करेंगे कि हमारी भक्ति सुरक्षित रखिए, हम भगवान के माया शक्ति में पड़े नहीं, तो नरसिंह देव अवश्य हमारी भक्ति की रक्षा करेंगे, जैसे कि उन्होंने प्रहलाद की भक्ति और प्रहलाद की भी रक्षा की। प्रहलाद ने वास्तव में ये सारी बातें अपने गुरु नारद मुनि से सीखे थे, जबकि प्रहलाद अपने मां के गर्भ में था। जब हिरण्यकश्यप जंगल में तपस्या करने गया था, उस समय देवी देवताओं ने आक्रमण किया था और हिरण्यकश्यप के रानी कयाधु का अपहरण करके ले गए थे, और वो चाहते थे कि जब बच्चा जन्म ले उस समय उस बच्चे की हत्या हम करेंगे। लेकिन नारद मुनि वहां पर आए और उन्होंने बताया इंद्रदेव को कि इस रानी के गर्भ में एक भगवान का बहुत शुद्ध भक्त है, इसलिए इसको चोट नहीं पहुंचना चाहिए। इंद्रदेव ने नारद मुनि की बात मान ली, कयाधु महारानी की परिक्रमा की और सारे देवता लौटकर चले गए। उधर कयाधु नारद मुनि के आश्रम में रही। नारद मुनि ने कयाधु को श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। मां तो भूल गई, क्योंकि मां तो चिंतित थी कि मेरे बच्चे की रक्षा होनी चाहिए और मेरे पति जल्दी से वनवास से आने चाहिए, इसलिए जाना समय वो याद नहीं रख पाई। लेकिन उसके गर्भ में जो बच्चा था, जो आगे चल के प्रहलाद बना, उसने बहुत ही अच्छे ढंग से नारद मुनि की प्रवचन को सुन लिया और उसके मन में ये बातें बहुत सुदृढ़ रूप से जम गईं। और आगे चल के जब प्रहलाद ने अपने मित्रों को ये उपदेश देना आरंभ किया था, तो मित्रों ने पूछा था कि प्रहलाद, तुमने ये बातें कहां से सीखी हैं? हमारे गुरु तो एक ही हैं और हमारे गुरुजनों ने तो हमें ऐसे कभी नहीं सिखाया। तो प्रहलाद ने जवाब दिया कि जब मैं मेरे मां के गर्भ में था, तो नारद मुनि की कृपा से मुझे ये भक्ति के संस्कार मिल गए। तो देखिए, गर्भवती स्त्री को चाहिए कि जब बच्चा उसके गर्भ में हो तो हमेशा वो भगवान का स्मरण, श्रवण, कीर्तन, भक्ति करती रहे, ताकि बच्चे के ऊपर अच्छे संस्कार और अच्छा प्रभाव पड़े, जिससे कि आगे बढ़कर वो भगवान का अच्छा भक्त बने। इसी वजह से प्रहलाद शुद्ध भक्त हुए थे और उन्होंने नरसिंह देव की कृपा प्राप्त कर ली थी। तो भक्त का स्वभाव यह होता है कि कितना कोमल और निर्मल होता है कि भगवान नरसिंह देव के इतने क्रोध स्वरूप को भी वो तुरंत शांत कर पाए। तो प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों में चलकर हमें भी अपने जीवन को सफल बना देना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आज थोड़ी कथाएं प्रहलाद और नरसिंह देव के बारे में कहने के लिए प्रयास किया। प्रहलाद महाराज के गुण अनंत हैं, जितना कहने जाएं उतना कम है। लेकिन अगर आज नरसिंह देव चतुर्दशी के उपलक्ष में हम दोनों प्रहलाद महाराज को और उनके आराध्य देव नरसिंह देव को प्रार्थना करें कि हमें भी भक्ति मार्ग में आगे आप प्रगति करने के लिए शक्ति दें, बुद्धि दें, तो इस दिवस पर वो बड़े कृपालु होंगे और हमारी प्रार्थना पूरे करेंगे। तो आइए अभी हम थोड़ी देर में कीर्तन करेंगे। उसके पहले जो बच्चों के कार्यक्रम हुए थे, उनके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अभी होना है और उसके बाद में आरती और कीर्तन।